اللهم صل على محمد وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چیزیں دو ہیں، ایک کا نام زندگی اور ایک کا نام موت. ایک میں حیات موجود ہوتی ہے اور ایک میں جمود. چیزیں دو ہوتی ہیں، ایک کا نام زندگی اور ایک کا نام موت. ایک میں حیات ہوتی ہے اور دوسرے میں حیات نہیں ہوتی. اور حیات جس چیز میں ہوتی ہے اس چیز میں حرکت ہوتی ہے. جس چیز میں کیا ہوتی ہے؟ حیات ہوتی ہے، اس میں حرکت ہوتی ہے. پانی جب تک بہتا رہتا ہے تو اس میں حیات ہوتی ہے اور اس میں تازگی رہتی ہے اور شرعاً بھی یہ پاک ہے. اور جب اس میں ٹھہراؤ آتا ہے، پانی میں جب کیا آتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، جمود آتا ہے، تو یہ سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے. پانی جب تک کیا کرتا ہے، بہتا رہتا ہے، چلتا ہے، اس میں حرکت ہے، تو اس کی زندگی ہے. اور جب اس میں جمود آ گیا، ٹھہراو آ گیا، تو یہ سڑ جاتا ہے اور جیسے انگریزی کا جو محاورہ ہے کہ اسٹیگنیشن لیڈس ٹو پیوٹریفیکشن، جو چیز بھی ٹھہر جاتی ہے، جس چیز میں بھی ٹھہراو آ جاتا ہے، وہ چیز آ کر کر گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہے. اور یہ قاعدہ جو ہے، یہ اصول جو ہے، یہ کم و بیش ہر چیز پر دنیا میں لاگو ہو جاتا ہے. نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ان میں بھی یہی ہوتا ہے. ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. اور جو چیز حرکت میں رہتی ہے، نشو و نما میں رہتی ہے، وہ باقی رہتی ہے. اور دوسری، چاہے نباتات کی پلانٹس کی قسم سے ہو یا اینیملس کی قسم سے ہو، وہ جو نسل ہے یا اسپیشیز ہے یا وہ چیز ہے، وہ نہیں رہتی ہے. تو زندگی کس کا نام ہے؟ حرکت کا نام. زندگی چلنے کا نام ہے. اور جب ٹھہراؤ آتا ہے تو جس طرح سے میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کا سوچ منفی ہوتا ہے اور ایک کا سوچ مثبت ہوتا ہے. منفی یعنی نگیٹو، और मुस्बत यानी पॉजिटिव। जिसका सोच मनफी होता है, जिसका सोच नेगेटिव होता है, वो हर चीज का डार्क साइड या ये कि अंधेरा वाला साइड देखता है, और जिसकी सोच मुस्बत होती है वो हमेशा रोशन साइड देखता है, ब्राइट साइड। हर चीज में दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू। हाँ, बात समझ में आती है। हर चीज में दो किस्म के ये होते हैं। और जो मनफी सोच वाला होता है, जो जिसका अंदाजे फिक्र, अंदाजे सोच मनफी होता है, नेगेटिव होता है, तो वो हर चीज का, अब उसको अपने वो मुस्तकबल पर जब नजर डालता है तो उसका अपना मुस्तकबल धारक नजर आता है, तारीख नजर आता है। उसको अपना मुस्तकबल क्या आता है नजर? तारीख नजर आता है, धारक नजर आता है, कुछ नहीं। अब जब इसने अपने मुस्तकबल के बारे में देखा कि ये बिल्कुल उसको कोई, तो ये ना उम्मीद हो जाता है। क्या हो जाता है? ना उम्मीद हो जाता है, और ये ना उम्मीदी उसको कुफर कर ले जाती है। ना उम्मीद न हो, अल्लामा इकबाल अलैह रहमा ने फरमाया, ना उम्मीद, ना उम्मीदी जवाल है इल्म व इरफान का। खूब सोच लो, हम में से अक्सर लोग जो हैं, इस सोच ने हमारे जितनी भी सलाहियतें हैं और जितनी भी कुव्वतें हैं और जितनी भी अल्लाह ताला ने जो इस्तेदार दी है, उसको इसने क्या किया है? मुअत्तल करके यानी ख़त्म करके रख दिया है, और ये बैठा हुआ है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, आगे सब अंधेरा है, मैं एकदम बेकार नालायक, मेरे से कुछ नहीं होने का, और बैठा है इसी तरह से दिन दिन गुजारता है। क्योंकि इसका लाजमी नतीजा ये है कि इंसान अमल क्यों करेगा, कोई चीज क्यों करेगा कि उसको किसी चीज के हासिल करने की उम्मीद है? उम्मीद है नहीं तो क्यों करेगा? तो शैतान ने इसको ऐसा किया है कि ये बिल्कुल अपने से नाउम्मीद बैठकर बैठा हुआ है। तो फरमाया, नाउम्मीदी जवाल है इल्म और इरफान का, ना इल्म हासिल होगा ना इरफान हासिल होगा, इल्म भी नहीं हासिल होगा, इरफान यानी मुआरिफत इलाहिया ये भी नहीं हासिल होगी। और कहा, याद रखो, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में, ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीद जवाल है इल्म इरफान का। उम्मत पर मजमूई तौर पर ना उम्मीदी छाई हुई है, इंफरादी इंडिविजुअल सतह पर भी मायूस और नाउम्मीद बैठा हुआ है, और फर्द ही जो है उम्मत को बनाते हैं, तो जब फर्द फर्द ऐसे नाउम्मीदी से बैठे तो मजमूई तौर पर भी नाउम्मीदी और मायूस। ये जहर कातिल है, ये बहुत ही यानी अजीम नुकसान जो हो रहा है उम्मत को इस सोच से हो रहा है, नेगेटिव सोच। और ये शैतान का हरबा है, इबलीस का हरबा है। इबलीस बहुत चालाक है, उसने देखा कि इसको क्या किया जाए और दूसरे लोग जो हैं हवा है गो तुंद तेज, हवा है गो बहुत तेज आंधी चल रही है। क्या चल रही है? खतरनाक हवा चल रही है। अब ये मनफी सोच वाला इसमें चराग जलाएगा? वो तो सीधे में नहीं चराग जलाएगा, अगर हवा भी नहीं चल रही है आ ये भी बुझ जाएगा। उसका सोच ऐसा होता है, ओके माचिस वो उसकी वो तीली खराब हो जाएगी, तेल खराब हो जाएगा, वो उसको भी नहीं जलाएगा। वो अगर जबरदस्त तेज हवाएं चल रही हैं वो कहां से चराग? हवा है गो तुंद तेज, अपना चराग जला रहा है। अपना वो मर्द दरवेश जिसके अंदाज है खुसरोवाना। क्यों? अब आंधी चल रही है, चराग के जलते रहने के कितने चांसेस हैं और इसके बुझ जाने के कितने चांसेस हैं? अगर हम ये कहेंगे कि 99.99 99.99% चांसेस ये है कि ये बुझ जाए ये चराग, और 0.01% दिल फर्ज मान ले कि इसके चांसेस हैं कि ये जलता रहेगा। कितने चांसेस इसके पास हैं कि ये नहीं जलेगा? 99.99% ठीक। हाँ, अब जो अल्लाह की कुदरत कामिला पर यकीन रखता है, अल्लाह की कुदरत कामिला पर यकीन रखता है, उसको जो वो 0.01% की उम्मीद है वो उसको नहीं छोड़े बैठा, उसको नहीं छोड़े बैठा। क्यों? जो हो जो के यकीन तो कट जाती है जंजीर। नौजवानों को सही सिमत में अपने सोच को इस्तेमाल करना है। ये जो जमूद है इसने आजा को मुअत्तल करके रखा है, यानी जिस्म के मुख्तलिफ सलाहियतों को खत्म करके रखा है। बेकार बैठा हुआ कुछ नहीं करता, इसमें हयात नहीं है, जिंदगी नहीं है। क्यों? इसमें जमूद है। जमूद समझते हो? फ्रीज होना। आजकल तो अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं, उर्दू कम समझते हैं। इसका इसकी जिंदगी का पहिया जाम हो चुका है। अब ये मिसले जिंदा है या मिसले मुर्दा है? मिसले जिंदा है या मिसले कि इसके इसकी जिंदगी का जाम पहिया जो है जाम हो चुका है। इसके अंदर जमूद है, इसके अंदर जुल्मत और तारीखी है। वो नूर की ईमान की नूरानियत और बशाशत में नाउमीदी कहां से इन्हें करीब आने पाएगी? नाउमीदी में क्या है? नूरानियत है, जुल्मत है, अंधेरा है या नूरानियत है? नाउमीदी में अंधेरा है, तो अगर इसको ईमान की चिंगारी है तो अंधेरा कहां से रहेगा? ईमान में कुदरती तौर पर नूर होता है, रोशनी होती है, बातनी तौर पर ईमान में रोशनी होती है। जैसे कुरान हदीस की आयात और अहादीस मुबारक में इसकी सराहत मिलती है कि ईमान में नूर होता है, बल्कि ईमान नूर ही है। तो जब अगर नूर है तो फिर अंधेरा कहां रहेगा? तो ये मन की सोच या जिसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक अप्रोच या पेसिमिज्म, ये कहां रहेगा? क्या हो गया, यानी कैसा कैसी मीठी नींद सुला दी शैतान ने इब्लीस ने, जागता नहीं है, अपने जमीर को झंझोड़ता नहीं है कि क्या मेरे अंदर जिंदगी है, क्या मेरे अंदर जान है या नहीं है, हयात है, हरकत है। तो हरकत कैसे पता चलेगा, पता चलेगा कि मैं कल का दिन जो मैंने गुजारा और आज का दिन, आज का दिन मेरा कल के दिन से कैसे बेहतर। मैंने ईमानियात में, अकाइद में, अमल में, इबादात में, अखलाकियात में, रूहानियात में, इन सब में आज के दिन में मैंने कितनी तरक्की की, मेरे इल्म में हर रोज हर लम्हा तजिया करेगा, जिसमें हयात होगी वही करेगा, जिसने ये जिसको मनफी सोच ने क्या कर दिया, मुअत्तल कर दिया, तो वो तो कुछ नहीं होगा, नहीं से तो क्या होगा, मैं तो बेकार नाराय हकीर फकीर नाचीज। अरे ये हकीर फकीर नाचीज की इस्तेमाल दूसरी जगह इस्तेमाल होती है, हर जगह नहीं होती है। मैं जी हकीर फकीर नाचीज, मुझसे क्या, मैं बिल्कुल गद्दा, मुझसे ये नहीं वो नहीं, और इसी में सो जाता है ये, क्यों कुछ करना नहीं चाहता इसको, इसके अंदर वो ईमान की हरारत नहीं आती है, थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, समझने की, दीन को समझने की जरूरत होती है। जैसे हमारे बात लोग कहते हैं, मेरी तो ये हैसियत नहीं कि यहाँ अक्सर वाइजों ने रुलाया बहुत लेकिन दीन समझाया बहुत कम, रुलाया तो बहुत कन्या उतानी हो दुआ दो उन्होंने कहती सुन पता मगर कन्या तानी आतवादा, रोना भी ठीक है अल्लाह की एक बात ये है, लेकिन दीन को समझना है। ये जिंदगी एक अजीम सरमाया है, जिंदगी क्या है, एक अजीम सरमाया है, तो अगर इसको जीते जी भी मुर्दा जैसा है, ये अकलमंद है या नादान है, ऐसा शख्स अकलमंद है, इसको अकलमंद कहेंगे या नादान कहेंगे। जो नाउम्मीद होता है उसको अल्लाह की कुदरत कामला पर यकीन नहीं, ये ईमान की निशानी है, कुफर की निशानी है। खूब सोच लो समझ लो, जो नाउम्मीद होता है उसको अल्लाह की कुदरत कामला पर यकीन नहीं, और अल्लाह की कुदरत कामला पर यकीन ना होना ईमान की निशानियों में से है या कुफर की निशानियों में से। अपना चराग जला रहा है वो मर्द दरवेश जिसके अंदाज है खुसरोवाना, इतना मेरा काम है चराग जलाना, चाहे रास्ते में दोस्त मिले या दुश्मन, मुझे इसके क्या काम, मेरा काम तो चराग जलाना। अब इसने अपना चराग ही बुझा दिया तो दूसरों का चराग क्या जलाएगा, इसने अपने चराग को जला दिया। अल्लाह के हय होने पर, अल्लाह के कय्यूम होने पर, अल्लाह के कादिर होने पर, अल्लाह के मुक्तदिर होने पर, अल्लाह के रज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन होने पर, अल्लाह के अजीज होने पर, हर चीज पर घालिब आने वाला जिसको कोई आजिज नहीं कर सकता, जिसको कोई आजिज नहीं कर सकता, कोई चीज है ही नहीं जो अल्लाह को आजिज कर सके। तो ये नाउम्मीदी और ये यानी मुस्तकबल को तारीख समझना, ये तो दूसरों के आईने से दूसरों के। अब एक और क्या है, बातिल के जो और शैतान के हरबे तो रोज रोज आजमाता है, हैं? अब ऐसे कि अब ऐसा खौफ पैदा करो उम्मत में कि ये बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल कमजोर और ये बिल्कुल ऐसा समझें कि फिर किसी चीज को करने की कोई हिम्मत इनमें ना हो। तो ऐसी ऐसी चीजें करो और ऐसे ऐसे, हाँ तो ठीक है, लेकिन इसको याद नहीं है वयम करूं ना, वो मैं करूं वो मैं करूंगा। जहां कुरान ने कहा कि इन लोगों ने मकर किया, इन लोगों ने साजिशें कर दी, लेकिन इनको याद नहीं है कि अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। कुरान ने देखो, कुरान का अस्लूब देखो, जहां जहां काफिरों के और इनके हरबे बयान किए वहां साथ में ये भी बताया उम्मत मुस्लिमा को वल्लाह खैरुल माकिरीन। बताया नहीं बताया? इन्नहुम यकीदून कैद, करते हैं अपने तौर से बहुत से हरबे। इन्नहुम यकीदून कैद व अकीद कैद, हाँ अल्लाह ढील दे रहे हैं, अल्लाह ढील दे रहे हैं। तो आपको खुदाई से क्या मतलब, आपको खुदाई से क्या मतलब, खुदा क्या चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, आपको उसकी क्या मतलब? आपका मतलब ये होना चाहिए कि आपको क्या करना है। हम तो खुदाई में दखल देते हैं कि यहां ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए, उसको ये मुसीबत आनी चाहिए, इसको ये मुसीबत आनी चाहिए, ये क्यों खा रहा है, ये क्यों जी रहा है, ये सब खुदाइयत के काम। हमें इसे क्या, बंदे को इसे क्या कर। अब अल्लाह ताला हमारी मर्जी के मुताबिक दुनिया को नहीं चलाते, वो तो अपनी हिकमत के साथ चलाते। अगर वो ऐसा करते फिर इबलीस को पैदा ही नहीं करते, अल्लाह ताला इबलीस को पैदा ही नहीं करते। इबलीस को किसने पैदा किया, या हमने पैदा किया, या इन लोगों ने जो ये बातिल परस्त लोग हैं इन्होंने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह को, अल्लाह ताला को अगर ये चीज, ये दुनिया को जो है अल्लाह ताला अपनी हिकमत के साथ चलाते, और उन अल्लाह ताला की हिकमत को समझना बंदे के बस की बात नहीं है, लेकिन बंदा दखल देता है खुदाइयत में, अपना काम छोड़ देता, अपना मन से फर्ज मन से भी छोड़ देता, जो करना है वो नहीं करता, तो खुदा ताला को मशवरा देता कि फलां मुल्क को ये हो जाए, फलां मुल्क को हो जाए, उसको ये हो जाए, इसको ये हो जाए। ये कायनात किसकी है? हाँ जी, इसलिए वो जो बहुत ये जुमला जो मैं अक्सर नकल करता हूँ, फिक्रे जहां मुझे क्यों हो, ये जहां तेरी है या मेरी, जहां तो उसको चलाना है। तो आप, हमें ये देखना है कि हमसे अल्लाह क्या चाहते हैं और क्या वो हम करते हैं या नहीं करते। नताई तो अल्लाह ताला के हाथ में, नताई तो उसके हाथ में, और दूसरी चीजें सब हिकमतें अल्लाह के हाथ में, वो बंदे का क्या काम। अब खुदाइयत में दखल देकर अपने आप का अपना जिया कर रहा, अपना वक्त जाया कर रहा, ये खूब समझने की बात है कि बंदा क्या करता है, खुदाइयत में दखल देता है। हमारा यकीन है और ये हक भी है कि दुनिया में किसी मच्छर के पर को भी कोई जरा नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकता बावजूद अल्लाह ताला के चाहने के, नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला जो चाहे तो बस हमें हम बरी हो गए। जैसे आम लोगों को ये क्या बोलते हैं उसको, दिमाग खराब हो गया कि ये बात नहीं समझ गए, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तकदीर की, हमें क्या गुनाह है, तकदीर तो लिखी उसने, अब हमें क्या है, हम उस तकदीर ने हमको मजबूर कर दिया। ये जबर जो है ये इस्लामी अकीदे के खिलाफ है कि जबरन इंसान को गुनाह कराया जाता है या जबरन तकदीर के जरिए से, या उसको ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये तकदीर का मसला समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन बंदे को अल्लाह ताला ने एक आज़ादी दे दी और बंदा क्या है, नियत करने में बंदा इसको आज़ाद छोड़ा गया और बंदा कासिब एमाल है अगर के खाल के अफाल नहीं। तो इसलिए सही तरीका ये है कि हमको ये देखना है कि हमारा क्या काम, हमारा हाँ अब इसको देखना है। अब ये बैठा सोच ले कि کل یہ پرسوں یہ پھر یہ اب یہ مستقبل کی سوچ میں رہ کر بھی اس کو ابلیس تلبیس کرتا ہے. مستقبل کی یا تو یہ ماضی کے گناہوں پر سوچتا ہے یا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے. یہ دونوں جیسے مولانا رومی علیہ رحمٰن نے فرمایا ماضی و مستقبل پردے خدا, ماضی و مستقبل پردے خدا. اب ماضی پر سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا اس کو کیا فائدہ ملے گا, اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, معلوم نہیں کب زندہ ہوگا نہیں ہوگا. اس کو حال کی فکر کرنی تھی کہ آج اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. اب اس نے حال کو چھوڑا ماضی پر سوچ رہا ہے تو وقت ضائع, مستقبل کی فکر پڑی ہے وہ لاحاصل. اور جس کا حال اچھا ہوگا اس کا مستقبل تو اچھا ہونا ہی ہے, اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا. تو اس کو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ میرا جو آج کا دن ہے آج کا یہ لمحہ یہ میں کس میں صرف کر رہا ہوں, اور پھر برابر اپنا تجزیہ کرتا رہے گا کہ کل کے دن میں اور آج کے دن میں میں نے کیا کھویا کیا پایا, میں نے کیا کھویا کیا پایا, اور اس میں کتنی ترقی ہو گئی. ہاں اب اگر ٹرین چلتی ہے, کیا چلتی ہے, ٹرین اگر چل رہی ہے اور اس میں انسان بیٹھا ہوا ہے, یہ برابر اس کے سامنے سے جو چیزیں ہیں وہ بدلتی رہیں گی, بدلتی رہیں گی نہیں بدلتی رہیں گی. ابھی باغ آیا ابھی نہر آئی ابھی سڑک آیا ابھی بستی آئی ابھی ویرانہ ہے, یہ برابر. اور اگر ٹرین ایک ہی جگہ ہے تو جو سامنے ہے وہ سامنے ہے, اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو اگر یہ چل رہا ہے, اگر یہ چل رہا ہے تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو یہ, ہاں اب چلنے کے دو قسمیں ہیں, کیا ہیں چلنے کے, ہاں پھر سے دو قسمیں. چلنا آگے بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے, ایک آگے چل رہا ہے ایک ریورس میں چل رہا ہے, پیچھے پیچھے چل رہا ہے, اس کو بھی چلنا. تو اب اس کو یہ بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے کس سمت میں, آگے کی سمت میں چل رہا ہے ہاں یا پیچھے کی سمت میں چل رہا ہے؟ نہیں جی آگے کی سمت میں چل رہا ہے. ٹھیک, اب اس میں کئی صورتیں پھر اور ہیں, اب یہ صحیح راستے پر چل رہا ہے یا ادھر ادھر کو چل رہا ہے, یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. جو شخص اپنی زندگی کے ساتھ کیا ہے یعنی سنسیئر ہے اخلاص کے ساتھ سوچتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم سلیم دیا ہوا ہے, فہم سلیم اللہ کی بڑی نعمت ہے. اگر دماغ ہی کو یعنی کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ رحم کرے, دماغ ہی بند ہو گیا تو اس سے بڑا قہر کوئی نہیں. یعنی اگر حق کو حق نہیں سمجھ رہا ہے, حق اور صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو اس سے بڑے قہر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. کوئی بیماری یا کوئی مالی نقصان یا کوئی جانی نقصان اس کے برابر کچھ نہیں ہے کہ ایک شخص کو حق سمجھ نہیں آ رہا اور وہ صحیح نتائج اخذ کرنے سے, صحیح کنکلوژنز ڈرائیو کرنے سے اس کا دماغ آری ہے یعنی نہیں کر سکتا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر اللہ کا قہر ہے. تو اللہ کی بڑی, وَمَن يُوتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت دی گئی. اب حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی فہم ہے, حکمت اسی فہم کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کہا کرتے تھے کہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی کتاب دی ہے الگ سے, کیونکہ آپ کے علوم بہت عجیب عجیب باتیں ہم بولتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی فرمایا تھا کہ کوئی کتاب الگ سلگ سے نہیں تھی, ہاں یہ اللہ کا ایک فہم ہوتا ہے جسے اللہ دیتے ہیں. ٹھیک, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تو سب نے سنا. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ اللہ کو یعنی उसका इंतखाब करे या ये कि दुनिया का इंतखाब करे। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला रोने लगे, किसी को समझ में नहीं आया इसमें रोने की क्या बात, बंदा अल्लाह किसी बंदे को इख्तियार दे तो ये तो अच्छी चीज है, और अगर बंदे ने अल्लाह को इख्तियार किया तो और भी अच्छी चीज है, इसमें रोने की क्या है। किसी इतने बड़े बड़े सहाबा थे, किसी की समझ में नहीं आया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। फिर जब पूछा गया तो फरमाया कि देखो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से नकल करने का इशारा है, और ये जो है ये जिससे ये जिसके बारे में कहा ये खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनको पूछा गया, पैगंबरों से ऐसा होता है अल्लाह ताला का मामला कि ऐसे मौत नहीं आती, मौत का फरिश्ता नहीं आता, पहले इस तरह से इस किस्म का होता है पैगंबरों के साथ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूछा गया। तो वो तो हमेशा अल्लाह को पसंद करने वाले फी रफी के लाला आखिर कलिमा थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहाने मुबारक पर कि मैं अब सबसे अच्छे दोस्त सबसे अच्छे रफीक के पास जा रहा हूँ। तो अल्लाह ताला यानी अब ये अबू बकर का फहम था जो दूसरों पर फाइक था, यानी दूसरों के ऊपर यानी उस पर उनको फौक किया नसीब थी। तो मतलब ये कि ये जो फहम है फहम दीन आजकल क्या मुसीबत है, ये बहुत बड़ी मुसीबतें हैं, दीन के लाइन से भी मुसीबतें और दुनियावी तो मुसीबतें हैं ही हैं कि सही दीन समझने से और सही दीन की नहज इससे क्या है यानी उसका कहत नजर आता है, अल्लाह ताला रहम करे। हाँ, इसलिए सही चीज समझनी है तो क्या समझना है कि पहले अगर इसके अंदर ना उम्मीदी है तो समझना है कि ये कुफर की शाख ला या सुमिन रौहिल्लाह इल्ला القوم الكافرون। ये तो कुरान कैसा है, ये सिर्फ अल्लामा इकबाल ने शेर नहीं कहा, ना उम्मीदी कुफर है, ये जवाल है इल्म इरफान का, और हकीकतन ये जवाल है, ना उम्मीदी क्या है हकीकतन जवाल है, ये कुछ हासिल नहीं कर सकता। ये जिन जिन ये बुजुर्गों के और दूसरे चीजों के ये पढ़ता है सुनता है फिर अपने अंदर इस चीज की तमन्ना करता है तो ना उम्मीदी से ये कोई चीज मुमकिन नहीं, ना उम्मीदी बिल्कुल जवाल है इसके इल्म का भी और इसके मारिफत का भी। हाँ, अब उम्मीद आ गई, क्या आ गई तो क्या हो जाएगा इसमें, अभी तक ना उम्मीद ऐसा बैठा था बेकार सब बैठा था, कोई काम नहीं कुछ नहीं ये नहीं वो नहीं, बस और दूसरा मुसीबत है कि मैं जी मुराकबों में नींद करता है, क्या मुराकबा करता है जी, मैं मुराकबा करता हूँ, अरे नींद करता है मुराकबा समझना भी कोई आसान काम है, हैं? अब यहां से इसका वक्त हो गया, याद रखो कि अपनी जिंदगी के लम्हात मुसबत कामों में खर्च करो। मुझे मालूम नहीं कि कितने लोगों को ये अल्फाज समझ में आते हैं, क्या अपने लम्हात को किन में खर्च करो, यानी एक काम होता है नेगेटिव काम, एक काम होता है पॉजिटिव, या दूसरे ये कि एक काम जो है इसको कयामत में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, एक काम को नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, एक काम ये है कि उसको प्लस मार्किंग मिलेगा, हाँ जिसमें प्लस मिलने की उम्मीद है, और जो काम करने के हैं क्या है, जो काम करने के हैं, कुछ काम होते हैं न करने के, कुछ काम होते हैं और कुछ होते हैं करने के, जो काम करने के हैं वो काम करें, इसको फुर्सत नहीं मिलेगी दूसरों को के तरफ सोचने का और दूसरों की गीबत करने का और दूसरों की तनकीद करने का, इसको फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहता कि नहीं इसमें मुझे कुछ काम करना चाहिए, कुछ सॉलिड पॉजिटिव वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये लम्हा मुझे वापस नहीं आ रहा, ये लम्हा गया गया, अभी 5 बजे जो है आज 21 मार्च की, अब कभी नहीं आएंगे हमारी जिंदगी में, कल जो 5 बजेंगे तो 22 मार्च की होंगी, 21 मार्च 2008 की अभी 5 बजे कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, हम कहते हैं ये मार्च ही पे, मार्च तो वो 2009 का होगा, 2008 का नहीं होगा, तो गया तो गया, हमारे हाथ से गया। तो हमेशा क्या काम करें, हाँ शैतान के धोखे में ना आए। आज ये शैतान जो है, खूब समझना, गलत मुझ मेरी तरह मनसूब नहीं करना, खूब समझ लेना, क्योंकि बात को समझाने के लिए कहना पड़ता है, दरवेशी के लाइन से बेकार न करते। शैतान बड़ा चालाक, दरवेशी के लाइन से बेकार न करते, ये जिंदगी के लम्हात वापस नहीं आने के, तो इनको इस्तेमाल करना है। क्या करना है, इनको इस्तेमाल करना है, और सही इस्तेमाल करना है, और इस तरीके से इस्तेमाल जो शरीयत का तरीका है, जो मिजाज नबवी है, उस मिजाज नबवी के और इसको समझना है। इसके लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, बड़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं एक इन्हें क्या बोलता हूँ उसको, ये इजमाली उसूल, जनरल प्रिंसिपल, इजमाली उसूल अर्ज करता हूँ। अब इसकी तफसील और जुज़ियात वो तो किसी एक बयान में तो नहीं हो सकती, और हर एक हालात मुख्तलिफ होते हैं। ये मैं एक इजमाली तौर पर, इजमाली तौर पर बोलते हैं कि एक जनरल जनरलाइज स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, ऐसा हाँ, इसमें तफसील नहीं आएगी, डिटेल नहीं आएगा इसमें। तो ये यानी अक्सर देखते हैं ना कि अब देखो, अब इसी दावा सेंटर में हम अगर देखेंगे, और एक फयाज साहब अगर एक करेगा कि एक जुमा को सिर्फ इम्तिहान को बस सुनना ना हो, अब हम देखेंगे कि इतने साल से सुन रहे हैं, अब इससे क्या फायदा होगा, और ज्यादा पास मार्क्स मुझे उम्मीद नहीं है। एक दिन एक इम्तिहान भी हो जाए, जरा हम देखें हम कहाँ हैं, हाँ क्या मकसद सिर्फ सुनना है, हमारी जिंदगी में हरकत भी आ रही नहीं आ रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस मोड़ पर हैं, और क्या हमारी जिंदगी में हमने क्या पाया, तो उस दिन कोई नहीं आएगा इल्ला माशा। अगर इम्तिहान का अगर डेट फिक्स कर, अगर ऐसी वो अचानक मिले इम्तिहान तो वो अलग चीज़ है, अगर डेट फिक्स की आज इम्तिहान होगा, किस चीज़ का इम्तिहान होगा, मुफ्ती नज़ीर साहब के इतने बयान यहाँ हुए हैं, मेरा छोड़ो, मैं तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बीच में आ जाता हूँ। तो अब भाई इम्तिहान दे दो, देखेंगे कि क्या खोया क्या पाया है, तो फिर अल्लाह हाफिज। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि बात को समझा जाए, और इस सुस्ती को छोड़ा जाए, और एक क्या, अब हमने बोला ये मुस्बत करना चाहिए। देखो मोमिन को होना चाहिए प्रैक्टिकल, क्या एक होता है थ्योरिटिकल, गर्दन सब ये लफ्ज समझते होंगे, एक किताबें बहुत पढ़ी है, बहुत सुनता है, बहुत कहता है, ये अलग चीज है। एक है कि फजर नमाज में मैं खड़ा बेदार हुआ इस वक्त, या तहज्जुद में या फजर में, अब ये जिन का इसमें इसमें मेरा लाहे अमल क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, इसको बनाया है सुबह ही बनाया है इसको, कि मेरे आज के दिन का ये टाइम टेबल है, अब लाहे अमल भी नहीं समझ आ जाएगा, फिर अंग्रेजी करना पड़ेगा। तो एक टाइम टेबल कि इसमें मुझे ये चीजें हैं, अब उन चीजों में दूसरे दिन तो इजाफा नहीं होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी में, उसकी कैफियत में तो रोज रोज इजाफा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आज 10 रका दिन पढ़े, कब बार बार पड़ेगा फिर, ये नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो लेकिन एक, और फिर उसमें शाम के वक्त फिर वो एक वक्त रखेगा कि इस दिन में मैंने कितना इम्प्रूव किया, अब ये भी नहीं मालूम होगा कि हाजिर क्या करना है, कहते हैं ना तन क्या बोलते हैं वो, स्वंब कुजा कुजा शौर, काशी का शहर मशहूर है। तन धाग धाग शुभ स्वंब कुजा कुजा शौर, कि सारे जिसम जब जख्मी हो तो किस किस पर मरहम पट्टी करे, इस जख्म को मरहम पट्टी करे तो यहां से ये निकल रहा है रक्त और पाक, अब यहां करेगा तो यहां से निकल रहा है। हमारा हाल ऐसा है, बहुत संजीदगी के साथ अपने ऊपर रहम करना है। क्या करना है, हम बड़े जालिम, बहुत बड़े जालिम, ये क्यों, क्यों हम अपने ऊपर ही जुल्म करते हैं, दूसरों के ऊपर जुल्म करें वो दूसरी चीज है, लेकिन हम अपने ऊपर जुल्म, एक शख्स ने अपने आप को जहन्नम का मिजाज बना दिया, अपने ऊपर रहम किया जुल्म किया और अल्लाह ताला की मारिफत से इसको खाली रखा, अपने आप को तरकियात से अपने आप को महरूम रखा, ये जुल्म किया, क्या किया, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, तो बड़ा जुल्म, हम जालिम हैं, बहुत बड़े जालिम, समझते नहीं कि हम कितने बड़े जालिम। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, हमें दीन मांगना चाहिए और सही तरीके से बड़े संजीदगी के साथ प्रैक्टिकल अमली तौर पर चलना, ऐसे नहीं हाँ मैंने सोचा मैंने अब छुपा खून चला चला ठीक आज बोझों को कर, ये इजमाली चीज से कुछ नहीं होता ठीक। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता करे और अल्लाह ताला हमारे अंदर भी वो हरारत और वो हयात, हाँ अब हमको निशात सानिया चाहिए, हम तो मुर्दा हैं, है तो ये अलमिया लेकिन है हकीकत, हमको क्या चाहिए, कौन इसका तर्जुमा करेगा, मंजूर करेगा, बोलो भाई, हाँ अब हमारे अंदर जिंदगी क्या है, जमून है, यानी हम जैसे मुर्दा हैं तो हम फिर से जिंदा हैं, जब फिर से जिंदा तो वो वलवला अंदर होगा, वो जज्बा होगा, वो इंतजाजम होगा, वो उम्मीद होगी, वो कुव्वत होगी और हर चीज और ये जुल्मत के बादल अपने जहन से कल्ब से छिट जाएंगे और बड़े यानी एतमाद के साथ, किसके साथ, नमाज पढ़ता है कलमा नहीं पढ़ता, ये नहीं एतमाद के साथ पूरे ज़ौक़ और यकीन के साथ, तो इस एतमाद में भी निशात सानिया चाहिए, ये ज़ौक़ में भी यकीन में भी ये सब में निशात सानिया चाहिए। अल्लाह करे हमारी समझ में आ जाए, वाह प्रदारवाना अलहमदिल्ला।